أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
وبعد ذلك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس سے مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا کیجیے، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا دیجیے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق، اس پہ تدبر کریں گے، اس کے ان ڈیپتھ اسٹڈی میں جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے وقت میں بہت برکتیں عطا فرمائے. اللہ مجھے دل سے بولنے کی اور آپ کو دل سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات جو دل سے نکلے گی اور جو دلوں تک پہنچے گی وہ ضرور دلوں کو بدلے گی. اور اللہ رب العزت ہمیں وہ علم سکھائیں جو ہمیں نفع دے، اور ہر نفع مند علم کو ہم تک پہنچائیں. اللہ حق بات کہنے کی توفیق دیں، اور ہر حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ زندگی کی ان خوبصورت لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اور ہم سے وہ کام لے لیں جس کے بنا پہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور جنت ہمارا مقدر بن جائے. آمین یا رب العالمین. جی، تو آپ سب ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ الحمدللہ. بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ، کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ علم کی شان کو گرایا نہیں کرتے. اس لیے آپ جب قرآن کی کلاس لیں، چاہے آپ آن کیمپس ہیں یا آپ آن لائن ہیں، ایک ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ لیں، تاکہ وہ علم آپ کے اندر تک اترے. اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے فرسٹ کلاس کے ٹارگیٹس تھے کہ صدقہ کرنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، تو یہ سارے کام آپ کرتے ہوں گے. اور سورۃ الناس الحمدللہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور اس میں کیا ڈو اینڈ ڈونٹس تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیے. آئی ہوپ کہ آپ نے ان کو اچھے سے سیکھا ہوگا اور ان پر عمل بھی کیا ہوگا. تو سورۃ الفلق ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کو بیسیکلی دو پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا. एक पार्ट को आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपना कुरान खोल लीजिए। सूरतुल फलक, ये बेसिकली मक्की सूरत है। इसमें एक रुकू है और पांच आयात हैं। ये दोनों सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास एक साथ नासिल हुई हैं, और इनके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है। कुछ के मुताबिक ये मक्की हैं और कुछ के नज़दीक ये मदनी आयात हैं। और जो मक्की कहते हैं वो इसके कंटेंट और रिदम को देखते हैं, और जो मदनी कहते हैं वो एक वाक़े के बिना पे ऐसा कहते हैं। तो बहरहाल बात अहम ये थी कि दोनों सूरतें साथ नाजिल हुई हैं और इन दोनों को मौअज़ातैन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम सूरतुल फलक की इम्पोर्टेंस को देखेंगे, इसकी अहमियत को और इसके वर्चूज को। नंबर वन, अगर हम देखें तो इस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ा करते थे। नंबर टू, रसूलुल्लाह खुद पर और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम करते थे। नंबर थ्री, किसी कौम पर हिफाजत के लिए इन अल्फाज में कोई सूरत नाजिल नहीं की गई जिसमें जादू नजरे बद से हिफाजत तलब की गई हो। तो गोया ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए गिफ्ट है। फिर इसी तरह नंबर फोर, रसूलुल्लाह सोने से कबल 3 मरतबा पढ़ा करते थे। फिर अगर नंबर फाइव हम देखें तो दोनों सूरतों में यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास में मुस्तअज़ा भी अल्लाह ताला है और मुस्तअज़ा मिन्हु डिफरेंट है, यानी दोनों में इंसान जिसकी पनाह ले रहे हैं वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन किस चीज़ से पनाह तलब कर रहा है वो डिफरेंट है। लेकिन सूरत फलक में मुस्तअज़ा भी में एक आयत है, बाकी सारी मुस्तअज़ा मिन्हु है। ये फर्क आप समझने की कोशिश करें, जब आपका टेस्ट होगा तो एक सवाल ये लाजमी होगा कि सूरह फलक और सूरह नास में क्या डिफरेंस है। तो आप बता सकते हैं कि सूरह फलक में एक आयत क्या है, मुस्तअज़ा बिही है, और बाकी सारी आयत मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्री नफ्फाथाति फिल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, बाकी जितनी भी 4 आयात हैं वो क्या हैं, मुस्तअज़ा मिन्हु हैं। जबकि सूरत नास में 3 आयात मुस्तअज़ा बिही थी और 3 आयात मुस्तअज़ा मिन्हु थी। कौन सी 3 आयात मुस्तअज़ा बिही थी? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, और अगली 3 आयात मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये मुस्तअज़ा मिन्हु थी। एक फर्क आपको क्लियर हो गया। दूसरा फर्क जो है, इस सूरत में हम आउटसाइड शर से हिफाजत चाह रहे हैं और सूरत नास में इनसाइड शर से हम हिफाजत चाह रहे थे, यानी सदर के अंदर जो वसवसे आते हैं। लेकिन इस सूरत में हम हसद से और जादू से यानी आउटसाइड जो शर होता है उससे हिफाजत चाह रहे हैं। इस सूरत का एक और जो पैगाम है वो बड़ा खूबसूरत है कि बहुत से शर इंसानों की अपनी कमाई की वजह से नहीं आते, बल्कि वो आउटसाइड शर होते हैं और वो भी आजमाइश होती है। तो इस सूरत में इन्हीं आउटसाइड शुरूर को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। अब बात को आगे कंटिन्यू करने से कबल मैं चाहूंगी कि मैं आपको बता दूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस सूरत का क्या है। जो लोग मक्की कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि वो इसके कंटेंट को देखते हैं, इसके रिदम को देखते हैं, और जो लोग मदनी कहते हैं वो इसमें एक वाकया बयान करते हैं, और वो कौन सा वाकया है? याद रखिएगा कि 7 हिजरी के बाद की बात है, यानी सुलह हदीबिया के बाद की। यहूद खैबर में चले गए थे, रसूलुल्लाह की ज्यादा तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी क्योंकि जाहिरी बात है उन्होंने खयानत की थी। तो जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह अब हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं फरमा रहे, तो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोई स्ट्रेटजी अपनाई। खैबर के कुछ लोग लबीब बिन आसिम के पास गए और उससे कहा कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कट इट शॉर्ट, उन्होंने रसूलुल्लाह पर जादू करने का सोचा कि क्यों ना जादू करके रसूलुल्लाह को नाउसुबिल्ला डैमेज किया जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपके पास एक यहूदी लड़का कभी कभार आया था, तो लबीब बिन आसिम ने और उन शरीर पसंद लोगों ने इस लड़के से हेल्प ली और कौम में से आपके बाल मंगवाए और उस पर जादू करवा दिया और फिर एक कुएं में पत्थर के नीचे वो बाल दबा दिया। और याद रखिएगा, सही बुखारी और मुस्लिम की किताब में जादू होना साबित है। और इस जादू का फिजिकल इम्पैक्ट रसूलुल्लाह पर हुआ था, और वो भी सही बुखारी की हदीस में मेंशन है कि आप हजरत आयशा को बता रहे हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप वहां से खोल के देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जादू की वजह से रसूलुल्लाह फिजिकल डिस्टर्ब हुए थे, आपकी बिलीफ आपकी अकायद पर कोई असर नहीं हुआ था। और ये एक माह तक चलता रहा। उसके बाद ख्वाब में दो फरिश्ते आए हदीस के मफहूम के मुताबिक, और फिर उन्होंने बताया कि किसने जादू किया और कहाँ बाल हैं, किस कुएं के नीचे, और किस तरह क्या करने से, कौन से तदबीर अख्तियार करने से जादू के शर से आप महफूज हो सकते हैं। तो वो सूरह फलक और सूरह नास थी। तो ये हदीस का मफहूम मैंने आपके सामने रखा है। तो ये तो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ऊपर जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे इम्पोर्टेंस के हवाले से, वो सारे पॉइंट्स अहादीस से भी साबित हैं। मसलन सही मुस्लिम की हदीस 814 में है, उकबा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें कुछ खबर भी है कि आज की रात अल्लाह ने मुझ पर ऐसी आयात नाजिल फरमाई हैं कि उनके मिसल कभी नहीं देखी गई। और वो है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक से लेकर आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी ये 13 आयात टोटल बन रही हैं, सॉरी 11 आयात टोटल बन रही हैं। तो आपने इन 11 आयात की तलावत फरमाई। तो यहाँ से पता चलता है कि ये गिफ्ट है उम्मते मुहम्मदिया के लिए। फिर इसी तरह उकबा बिन आमिर ही बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ अबुआ और जहफा के दरमियान जा रहा था, अचानक तेज आंधी और सख्त तारीकी ने हमें घेर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो सूरतों के जरिए पनाह मांगने लगे और फरमाया, ए उकबा, तुम भी इन दोनों सूरतों के जरिए पनाह मांगो। किसी भी पनाह हासिल करने वाले ने कभी ऐसी पनाह हासिल नहीं की जैसी इन दो सूरतों के जरिए पनाह हासिल होती है। सुभान अल्लाह। यानी वो सहाबी डरने लगे तो रसूलुल्लाह ने फौरन ये दोनों सूरतें पढ़ी हैं और कहा कि ऐसी कंडीशन में तुम ये दो सूरतें पढ़ा करो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम भी बाज दफा कितने डिस्टर्ब होते हैं गुजरते हुए, कहीं अकेले ट्रेवल करते हुए, तो क्या करने चाहिए? जब पनाह लेनी हो तो इन दो सूरतों के पनाह में इंसान आए। बच्चों को कहीं भेजना हो, ये दो सूरतें पढ़ के उन पे दम करें ताकि वो अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाए। लेकिन हम लोगों पर भरोसा करते हैं, तुम मेरी बच्चे की केयर करना, खुद जाते हैं तो अपना फोन हाथ में रखते हैं कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ गई तो फौरन अम्मी को फोन करेंगे या फलां को फोन करेंगे। पहला भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए और फिर असबाब के दर्जे में दूसरे वसाइल को इख्तियार किया जाए, क्योंकि एक नाकिस मखलूक कैसे मुकम्मल हिफाजत कर सकती है? उसके हिफाजत भी नाकिस होगी। तो जो कामिल जात है ना, उसकी हिफाजत में अपने आप को और अपने प्यारों को सौंपा करें। फिर इसी तरह सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1458 में मेंशन है कि रसूलुल्लाह नमाज की इमामत करवाते हुए इन दोनों सूरतों के तिलावत फरमा रहे थे। यानी आप नमाज में भी ये सूरतें पढ़ा करते थे। और फिर इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 5017 में मेंशन है, हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात का मामूल था कि आप इन सूरतों की तिलावत करते थे। और कैसे करते थे ये मैं सूरतुल नास में बता चुकी हूँ। 3 बार पढ़ के अपने हाथ पे ब्लो करते और फिर अपने हाथों को 3 बार जहां जहां बॉडी तक हाथ पहुंचते फेर दिया करते थे। फिर इसी तरह तिरमिजी में हदीस नंबर 2903 है, उकबा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हर नमाज के बाद मौअज़तैन पढ़ा करूं, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करूं। और तिरमिजी की हदीस 3575 में मेंशन है, अब्दुल्ला बिन खबीब कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया कि तुम सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ा करो, ऐसा करना तुम्हारे लिए हर चीज से काफी हो जाएगा। यानी सुबह शाम के अस्कार में इन आयात को पढ़ा करो, इसी तरह रात के वक्त पढ़ा करो, इसी तरह फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करो, इसी तरह फर्ज नमाज के अंदर यानी कोई भी नमाज पढ़े उसके अंदर, इसी तरह खौफ और परेशानी के वक्त पढ़ा करो, इसी तरह खुद को अल्लाह की पनाह में देते हुए पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। तो ये फजीलत है इस सूरत की। तो गोया ये सूरत रसूलुल्लाह के साथ बहुत कनेक्टेड है, यानी आपकी जिंदगी में इस सूरत का बहुत ज्यादा अहतमाम था। तो इंशाल्लाह हमने भी इस सूरत को अच्छे से सीखना है और फिर इसको अपनी लाइफ में शामिल करना है। कोई भी चीज जिंदगी में तभी शामिल होती है जब उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो कुरान का भी टेस्ट डेवलप किया जाता है इसको सीख के, कभी तजवीद के जरिए इसमें कमाल हासिल करके, कभी तफसीर के जरिए, कभी तदब्बुर के जरिए, कभी इसके अल्फाज और इसके अजाइबात पर गौर व फिक्र करके। तो जब मैं और आप सीखेंगे कि सूरतुल फलक में बात क्या हो रही है, जब हम इन डेप्थ में जाएंगे तो हमें एक टेस्ट आ जाएगा और इंशाल्लाह फिर वो टेस्ट जिंदगी भर मुझे और आपको फायदा देता रहेगा। तो आइए अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह लेती हूँ या लेता हूँ, बिरब्बी रब की, अलफलकी सुबह के। कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ, मिन शर्री हर उस चीज़ के शर से, मा खलका जो उसने पैदा की, जो उसने पैदा की हर उस चीज़ के शर से मैं पनाह लेता हूँ, व मिन शर्री और शर से, गौसिकिन अंधेरी रात की, इदा जब, वक़बा वो फैल जाए, और अंधेरी रात की शर से जब वो फैल जाए, वमिन शर्री और शर से, अन्नफ़ासाती फूंकने वालियों के, फिल उक़द घिरों में, यानी नोट्स में, और फूंकने वालियों के घिरों में, उस शर से ए अल्लाह आपकी पनाह में आता हूँ। वमिन शर्री और शर से, हासिदिन हासिद के, इदा जब, हसदा वो हसद करे, और हासिद के शर से जब वो हसद करे।
ومن شر النفاثات في العقد. شر حاسد إذا حسد
پہلی آیت کی ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اگین قل آ گیا. اور قل دیکھیں قرآن میں دو طرح سے آیا ہے. ایک ہے قل للتخصیص, یعنی للتخصیص سے مراد کیا ہے کہ صرف رسول اللہ کے لیے کسی بات کو لے کر آیا ہے. مثلاً سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں ہے یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. تو اب یہاں پہ جو قل ہے وہ اسپیسیفک رسول اللہ کے لیے ہے, جبکہ دوسرا قل وہ للعموم ہوتا ہے, یعنی جنرلی اس میں بات ہوتی ہے, سب اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو یہاں جو قل ہے یہ للعموم ہے. اور قل کے میں پہلے بھی آپ کو معنی بتا چکی ہوں. آج ہم جو قل کے 6 معنی دیکھیں گے وہ آپ کو امام قرطبی, امام بغوی, ابن کثیر, ابن عطیہ, ان تفسیر میں انشاءاللہ قل کے یہ میننگز مل جائیں گے. کیونکہ اگین قل آیا ہے, کوئی تو بات ہے قل میں, تو 6 میننگز ہوتے ہیں قل کے, 6 ڈیمانڈز ہوتی ہیں قل کی. پہلی کیا ہے؟ قل محتاجی صرف رب کے سامنے, یعنی انسان جب قل کہتا ہے تو وہ اپنی عاجزی کو, اپنی ویکنس کو اپنے رب کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہے, کلیم کرتا ہے, اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو گویا قل کہنے سے تکبرانہ انداز ختم ہو جاتا ہے. متکبر دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے, متکبر کبھی دعا ہی نہیں مانگ سکتے, اللہم لا تجعلنا منہم. تو قل کا ایک پہلا معنی یہ ہے کہ محتاجی صرف رب کے سامنے. دوسرا معنی جو اس میں ہے یہ ایک اعلان ہے کہ میں صرف رب کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں. جب انسان قل کہتا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں, میں کسی اور کے غلامی میں نہیں, اپنے نفس کے غلامی میں نہیں, شیطان کے شرور کے غلامی میں نہیں, اور ایسے انسانوں کی غلامی میں نہیں جن کے قرین ان پہ مسلط ہو چکے ہیں, بلکہ میں تو اپنے رب کے غلامی میں آنا چاہتی ہوں. تیسرا میننگ تھا اخلاص کو ریفریش کرتا ہے, یعنی جب انسان قل کہتا ہے تو صاف وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ اپنے رب کے حکم کے تحت کرنے جا رہی ہوں, یعنی اپنے اخلاص کو ریفریش کرتا ہے, اللہ کے لیے میں وہ کام کرنے جا رہی ہوں. پھر اسی طرح چوتھا معنی جو قل کا ہے کہ اللہ کی پروٹیکشن سے پہلے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. اور اس لائن کو آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں کہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہم آ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی اطاعت نہ کریں. تو جب انسان قل کہتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں آتا ہے, کیونکہ اللہ کی اطاعت میں آنے کے بعد ہی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں بھی آئے گا. نمبر 5, قل کہنے سے یہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ دعا اس وقت نہ صرف پڑھی جائے جب مشکل آ جائے, بلکہ اس کو کانسٹنٹ دعا کا حصہ بنانا چاہیے, کانسٹنٹ زندگی کا حصہ یہ دعا ہونی چاہیے. کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. مگر افسوس آج ہم صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب مشکل آ چکی ہوتی ہے, روزہ اس وقت رکھتے ہیں جب مشکل آ چکی ہوتی ہے, نفل اس وقت پڑھتے ہیں جب مشکل آ چکی ہوتی ہے, قرآن زیادہ اس وقت پڑھتے ہیں جب مشکل آ چکی ہوتی ہے, یہ اذکار, یہ دعائیں, یہ سب اس وقت کرتے ہیں جب مشکل آ چکی ہوتی ہے. حالانکہ ان دعاؤں کا اہتمام اس وقت کرنا چاہیے جب انسان نارمل روٹین میں ہو, جب انسان اطمینان اور فرحت اور راحت کی حالت میں ہو, تاکہ اس پر مشکل آئی ہی نہ, یا اگر آئی بھی تو انسان برداشت کر سکے, اس لیول کی نہ آئی جس لیول کی وہ مشکل ہے. اور اسی طرح قل کا جو 6ٹا اور آخری معنی ہے وہ یہ ہے कि मुसलमानों को अल्लाह की हिफाजत में आना है, कुल बिल कौल नहीं बल्कि कुल बिल हाल और कुल बिल कलाम भी अल्लाह की बातों को अडॉप्ट करना है। अपने हाल में भी और अपने कलाम में भी अल्लाह की बातों को लागू करना है। तो ये 6 माना थे कुल के, क्योंकि कुल नेक्स्ट 2 सूरज में अगेन आएगा, एक सूरह काफिरून में और एक सूरह इखलास में, तो मैं वहां रिपीट नहीं करूंगी। तो अगर 4 बार कुल आ रहा है और इसके अलावा कुरान में जा बजा कुल आ रहा है, तो मुझे और आपको पता होना चाहिए कि कुल की क्या डिमांड्स हैं, या कुल कहने से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन होती हैं। तो कौन सी 6 थी, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करें। नंबर 1, मोहताजी सिर्फ रब के सामने। नंबर 2, इंसान ऐलान करता है कि मैं सिर्फ रब की गुलामी में आना चाहता हूँ। नंबर 3, इखलास को रिफ्रेश करता है। नंबर 4, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आने से पहले वो खुद को अल्लाह की इताअत में देता है। नंबर 5, ये दुआ सिर्फ उस वक्त नहीं पढ़ता जब उस पर मुश्किल आ जाती है, बल्कि ये दुआएं कॉन्स्टेंटली उसकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और नंबर 6, मुसलमानों को यानी मुझे और आपको अल्लाह की हिफाजत में सिर्फ कुल बिल कौल नहीं आना, बल्कि कुल बिल हाल और कुल बिल कलाम भी आना है। इसके बाद जो पहली आयत में दूसरा वर्ड है वो है आऊदु, और आऊदु किन 3 लेटर्स से मिलकर बना है, आइन वाओ जाल, और ये फेल मुदारे है यानी इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर पाया जा रहा है। और आऊज़ में कौन कौन से माना आते हैं, नंबर 1, किसी पर भरोसा करते हुए उसके हिफाजत में आ जाना। पहला कौन सा पॉइंट है कि किसी पर भरोसा करते हुए उसके हिफाजत में आ जाना। नंबर 2, किसी अनसीन खतरे से बचने के लिए किसी की हिफाजत में आना, यानी आऊज़ से मुराद होता है कि अनसीन खतरे से बचने के लिए इंसान किसी की हिफाजत में आए। नंबर 3, जब इंसान आऊज़ कहता है तो वो ऐलान करता है कि ए अल्लाह, मैं इतनी कमजोर हूं कि मैं अपने खुद हिफाजत नहीं कर सकती, तो मैं आपके सामने फुल एक्ट ऑफ सबमिशन के साथ मौजूद हूं। ये एक आऊज़ का पैगाम है। फिर इसी तरह चौथा इसमें माना आता है ऐसी प्रोटेक्शन जिसके बारे में इंसान जानता है कि अगर मैंने अडॉप्ट ना की तो मैं शर का शिकार हो जाऊंगा। और नंबर 5, ऐसे दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाना जो सर की आंखों से नजर ना आए। अब हासिद कभी शर यानी दिमाग की आंखों से जो हमारी आईज होती हैं इनसे नहीं पता चलता, इसी तरह जादू करने वाला। तो गोया आऊज़ का एक माना ये होता है कि ऐसे दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाना जो सर की आंखों से नजर ना आता हो। देखिए एक लफ्ज है आऊज़, लेकिन किस कदर माना इसके अंदर पाए जाते हैं, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो तीसरा लफ्ज है वो है बेरबी, और रब का नाम वो नाम है जिसको हमारी रूह पहचानती है, क्योंकि हमारी रूह ने सबसे पहला तारुफ रब के नाम के साथ किया था। जैसा आता है ना कि अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया था और जिस तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाया था वो अल्लाह के नाम के जरिए नहीं करवाया, वो रहमान के नाम के जरिए नहीं करवाया, वो रहीम या कोई और सिफाती नाम के जरिए नहीं करवाया, वो करवाया है अलस्तु बिरब्बिकुम। और रब में कौन कौन से माना आते हैं मैं सूरतुन नास में आपको बता चुकी हूँ, अगर याद है तो वेल एंड गुड, और अगर भूल चुके हैं तो एक दफा देख लीजिएगा। और आप देखिए कि कुरान की बहुत सी दुआएं और अंबिया की तकरीबन सारी दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बना ग़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اجعل هذا البلد آمنا، اور جتنی بھی دعائیں ہیں رب اجعل لي مقيم الصلاة، تو ساری دعائیں رب 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 سے شروع ہوتی ہیں۔ और रब में जो एसेंस है वो बड़ा जबरदस्त है, और जो मैं आपको सूरत नास में बता चुकी हूँ। अब पहली आयत का जो आखिरी वर्ड है वो है अल-फलाकी, और अल-फलक किस से मिलकर बना है, फा लाम कौफ, और फलक सुबह को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे को सुबह फाड़ती है, जब सुबह होती है तो रात के अंधेरा छट जाता है, फट जाता है। फिर इसी तरह फलक सीट को भी कहते हैं, जैसे कुरान में आता है फालिकुल हब्बी वन नवा, फालिकुल इस्बाह। फिर इसी तरह स्कॉलर्स कहते हैं कि फलक के अंदर खलक का भी मफहूम आता है, यानी हर तखलीक इज द टियरिंग ऑफ समथिंग, हर मखलूक यानी किसी चीज को फाड़ के बाहर आई है। मसलन आप एक दरख्त को देखें, वो बीज को फाड़ के बाहर आता है। आप इसी तरह एक छोटे से चिकन को देखें, वो अंडे से फट के बाहर आता है। आप इसी तरह किसी इंसान को देख लें, आप और बेशुमार मखलूकात हैं। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, बड़ा खूबसूरत ये माना देते हैं कि फलक के अंदर खलक का भी मफहूम आता है, क्योंकि तमाम कायनात को इसी एक्सप्रेशन से बनाया गया, फाड़ के, यानी जिस चीज को भी जिससे बनाया गया उस चीज से वो फट के बाहर आया है। ठीक है, तो ये थी पहली आयत, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। आई होप कि लिंग्विस्टिकली यानी आपको समझ आ गई होगी कि कुल का क्या माना है, अऊदु का क्या माना है, रब्बी का क्या माना है, और फलक का क्या माना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसान किस जात की पनाह ले रहा है, रब की, और रब की यहाँ कौन सी सिफत बयान हुई है, अल फलक, यानी जो रब है सुबह का। तो फलक से मुराद सुबह भी है और मखलूक, दोनों मुराद हैं, याद रखिएगा। और फलक बीज को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सुबह मुराद होगी और मखलूक मुराद होगी। तो गोया अल्लाह ताला बता रहे हैं, पिछली सूरत में अल्लाह ने अपना कुछ तारुफ यूं करवाया था, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, यानी एक सीन जो नजर आने वाली क्रिएशन है उसका जिक्र किया कि मैं उसका रब हूं, लेकिन यहाँ पे एक अनसीन चीज का। तो गोया अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, मैं सीन और अनसीन दोनों का खालिक हूं। अगर मैं नास का खालिक हूं तो मैं फलक का भी खालिक हूं, यानी तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कितनी चीजें फट के बाहर आती हैं, और खल्क में क्या क्या है, कितनी मखलूकात हैं, हम तो कुछ को जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या क्या जानवरों की वेराइटीज हैं, और इंसेक्ट्स की क्या क्या वेराइटीज हैं, और इंसानों की ही कितनी वेराइटीज हैं, और जिन्नात और मलाइका के अलावा और कौन कौन सी मखलूकात हैं। लेकिन अल्लाह सीन और अनसीन सबका खालिक है। तो गोया ये पहली आयत मैसेज देती है कि वो रब अंधेरे से रोशनी लाने का इंतजाम फरमा सकता है, यानी उसके लिए पॉसिबल है कि उसी अंधेरे को फाड़े और वहां से एक तुलू होता फजर का सूरज तुम्हारी जिंदगी में नमोदार हो जाए, और वो इतना चमकदार हो कि तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरों को खत्म कर दे। जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो रात की सारी तारीकियां छट जाती हैं। तो यही था इस पहली आयत का एक तरह से मफहूम। और देखिए यहाँ एक और जो मैसेज है इस सूरत का, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, इसका मैसेज ये है कि कभी भी रब्बिल फलक को ना भूलें, इस्लाम को थामे, अपने रब को पहचाने और उसकी माने, तो अंधेरों से जरूर खैर निकलेगा। अंधेरे में इंसान तभी जाएगा जब वो रब्बिल फलक को भूलेगा। उसके बाद अगली आयत पे हम आते हैं, मिन शर्री मा खलक, और यहाँ पे उमूमी शर की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो आयत नंबर 3, 4, 5 आएंगी वहां पे स्पेसिफिक शर होगा, لكن يعطيك عمومي شر من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں شر ایک جنرل ٹرم ہے. قرآن میں تین طرح کے برائی کے لیے تین طرح کے ٹرمز استعمال ہوئے ہیں، شر، ساء، بئس. اور بئس ایسی برائی کو کہتے ہیں جو انڈیویجل انسان کو برے لگتی ہے، مثلا فردن برے لگتی ہے. مثلا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مجھے برے لگتی ہو آپ کو نہیں لگے گی، یا آپ کو لگتی ہو مجھے نہیں لگے گی. اور اس کے اپوزٹ ورڈ ہے نعمہ، بئس کے اپوزٹ ورڈ ہے نعمہ. پھر اسی طرح ساء ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بدصورت ہو، ساء مصیرہ. اور اس کا لیول بئس سے زیادہ ہے. اور ساء کا اپوزٹ ورڈ ہے حسنہ. اور شر وہ برائی ہے کہ اس کو جو بھی اڈاپٹ کرے گا اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا، اور اس کا لیول بئس اور ساء سے بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک یونیورسل ایول ہے، اس کا مترادف ہے خیر. ٹھیک، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شر کا ورڈ یوز کیا تو اس کا کیا معنی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ماں کا ورڈ یوز ہوا، جو آج کے لیسن کی بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں ماں، ماں کا مطلب ہے جو کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو انڈائریکٹ مینشن کیا، ایسا نہیں کہا من شر المخلوق، من شر الانسانی، من شر الکونی. اللہ تعالیٰ نے کہا من شر ما، انڈائریکٹ مینشن کیا. کیوں ما کا ورڈ کیوں آیا، کوئی مجھے بتائے گا؟ من شر، ہر اس چیز کے شر سے، ما اس میں سے جو خلق آپ نے پیدا کیا. نمبر ون، اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ سب مخلوق پر کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے. کسی ایک کا ذکر نہیں کیا گیا، ماں جو بھی، اس میں انسان اور جن اور وہ بھی مخلوق جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے، اور جس کو ابھی تک کہیں سے کسی ریسرچ کے تھرو بھی سامنے نہیں آئی، اور انسانوں کی آنکھوں سے وہ اوجل ہے، سب کی سب شامل آ گئی. یعنی اللہ ہر مخلوق پر کمپلیٹ اتھارٹی رکھتے ہیں. نمبر ٹو، جو ماں کا ورڈ ہے نا، ماں للتبعیض، عربک کی ایک ٹرم ہے للتبعیض کے لیے آتا ہے. یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ من شر خلق، مخلوق کے شر سے، نہیں، ماں اس میں سے جو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق مکمل شر کی بیسس پر پیدا نہیں ہوتی، ایون ابلیس بھی نہیں. کسی بھی مخلوق میں مکمل شر نہیں ہے. دیکھیے ابلیس سرکش بننے سے قبل کیا تھا، کتنا عبادت گزار تھا، اس میں بھی ایک خیر کا پہلو تھا. تو کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں مکمل شر ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ اس میں ضرور ہوتا ہے. لیکن افسوس ہم آج کے اس دور میں انسانوں کے کتنا رو سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے فلاں بندے میں تو کوئی بھی خیر نہیں ہے. ہوتی ہے کس، کوئی بھی انسان مکمل طور پہ شر کا باعث نہیں ہوتا. کسی بھی درخت میں اگر کانٹے ہیں تو ساتھ پھول ضرور ہوتا ہے. اسی طرح جو اللہ نے ورڈ یوز کیا نا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کیا. تو جو کا ورڈ ایک آتا ہے سب کے لیے، نہیں جتنی مخلوق آپ نے پیدا کی، جس کو میں جانتی ہوں اور نہیں جانتی. اور مال للتبعیض کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس میں سے جو شر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ کیا چلا دوسرا پوائنٹ ہمیں، کہ کوئی بھی مخلوق اس میں مکمل شر نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ جو یہاں سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں فلو نہ ہو سوائے اللہ کے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ایک اللہ ہے جو ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی سے پاک ہے. اس کے علاوہ مخلوق، ہر مخلوق کے اندر، ہر رشتے کے اندر، ہر انسان کے اندر مکمل خیر نہیں ہوتا. वो रिश्ता हमें सुकून तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से मकामात पे वो अजियत भी पहुंचाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या समझ आया माँ से, कि कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। ठीक है, तो सारी मखलूकात के अंदर किसी ना किसी दर्जे का शर जरूर मौजूद होता है। बेहतरीन चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट हियर। बेहतरीन चीज मसलन आप देखें तो इस वक्त अगर आप कंसिडर करें, माल बेहतरीन है। माल के जहाँ बहुत से फायदे हैं, नुकसान भी बहुत हैं। इसी तरह मीठा खाने के बहुत से फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत हैं। फोन यूज करने के, अच्छा यूज करेंगे तो बहुत से फायदे हैं, बुरा यूज करेंगे तो बहुत से नुकसान हैं। तो हर चीज के एट अ टाइम बहुत से फायदे भी होते हैं, बहुत से नुकसान भी होते हैं। मसलन आपके पास ज्वेलरी है गोल्ड की, उसके फायदे भी हैं। और नुकसान क्या है कि हर वक्त आपको अलर्ट रहना होता है, हर वक्त आपको कॉन्शियस रहना होता है, उसको बचा बचा के रखना होता है। तो माँ पैगाम दे रहा है कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बेहतरीन चीज के अंदर भी नुकसान मौजूद होता है। ये इस यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल आज सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम परफेक्शन चाहते हैं। हम औलाद को भी अपनी परफेक्ट आंखों से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद में कंप्लीट परफेक्शन है। हम अपनी स्पाउसेस को भी परफेक्शन के नज़र से देखते हैं। हम अपने घरों को भी, हम अपने डिफरेंट रिलेशंस को भी परफेक्शन के निगाह से देखते हैं। हमें लगता है कि हमें 1% भी किसी की तरफ से कोई अजियत ना पहुंचे, और जब पहुंचती है हम डिप्रेस्ड होते हैं और हम रोना धोना और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें कि खैर के साथ नुकसान भी हर चीज़ के अंदर है, तो अगर किसी बंदे का मुझे इतना फायदा पहुंचता है, तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा तो इट्स वेरी नेचुरल, इसको भी मैंने एक्सेप्ट करना होगा। तो यूं लाइफ बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। और चौथा जो पैगाम है माँ का, मिन शर्री माँ, माँ का मतलब होता है उसमें से जो। ठीक है, तो यहां से चौथा माना पता चलता है कि मखलूक का शर अपनी वजह से होता है। लेकिन हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह ताला को मैं ही मिली हुई थी। नो, इस तरह नहीं कहना चाहिए। मखलूक का जो भी शर होता है वो उसके अपने हाथों की कमाई की वजह से होता है। फोन इटसेल्फ डेंजरस नहीं है, उसको यूज करने वाला डेंजरस बनाता है। इंसान इटसेल्फ डेंजरस नहीं है, वो खुद को खुद डेंजरस बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा समझने वाला था, इसमें बहुत लेसन था। और अल्लाह के नबी भी दुआ करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक। हमें भी इस दुआ को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए कि हर उस चीज के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उसके बाद जो तीसरी आयत है हमारी आज की आखिरी, वमिन शर्री गौसिकिन इदा वकब, और शर से अंधेरी रात की जब वो फैल जाए। अब देखें यहाँ पे रात की शर की बात हो रही है, और पहले समझिएगा कि हर अंधेरा सिर्फ और सिर्फ शर नहीं होता, रातें भी बहुत अहम होती हैं। मसलन शब्बे कदर की रात, शब्बे मेराज की रात, इसी तरह हर रात इटसेल्फ कितने इम्पोर्टेंट है। अभी हमने अपने दिन का आगाज किया, एक दो दिन रात को इंसान ना सोए ना, तो फिर रात की अहमियत का अंदाजा होता है कि रात भी इटसेल्फ कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ रात की किस शर की बात हो रही है, आइए देखते हैं। देखिए गौसक जो वर्ड है ना, ये गौइन सीन कौफ से मिलकर बना है, और अरेबिक में कहते हैं अव्वलुल्लैल, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट। जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 78 में आता है, व अकीमी सलाती लिदुलूकि शम्स इला गसक अल्लैल, यानी जब रात फैलना शुरू हो जाए उस हिस्से को गौसिक कहते हैं। और गसक का दूसरा मतलब होता है डूबना। अब इस हिस्से में कौन सा शर है, यह हमें हदीस से पता चलता है। बुखारी की हदीस है, मफहूम है हदीस का, कि जब रात अपने पर फैला दे तो अपने छोटे बच्चों को रोक लो, क्योंकि उस वक्त शैतान मुंतशिर हो जाते हैं, और अल्लाह का जिक्र करो। तो उस रात के उस हिस्से में क्या शर है? क्यों? क्योंकि देखिए, उस वक्त शैतान बाहर निकल आते हैं। मगरब के बाद का वक्त जिन्नात की एक्टिविटीज का वक्त होता है। जिन्नात एक अंधेरी मखलूक है, और वो अंधेरे में अपना काम अच्छे से करते हैं। तो इसलिए रात के इस शर से पनाह मांगी जा रही है, यानी उस वक्त जिन्नात आते हैं, और फिर जिन्नात मुंतशिर हो जाते हैं। और एक और हदीस का मफहूम है, याद रखिए कि मैं मफहूम का वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, कि शैतान हर उस जगह चले जाते हैं, हर उस इंसान के साथ जहाँ अल्लाह जिस जो अल्लाह का जिक्र ना करें। तो यहाँ से हमें मॉर्निंग इवनिंग सप्लिकेशंस का पता चलता है। अक्सर सवाल भी आता है कि क्यों कहा गया कि शाम के अस्कार असर के बाद और मगरिब से पहले, ताकि इंसान ऑलरेडी खुद को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दे, जहाँ जब वो उसने अल्लाह का जिक्र किया होगा, उसके इर्द गिर्द एक हिसार कायम होगा, तो शैतान कहाँ आएगा। और फिर देखें, यहाँ बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि अपने बच्चों को रोक लो, और एक और जगह आता है कि उस वक्त अपने दरवाजों को बंद कर लो, बच्चों को अंदर रख लो। आज पता नहीं क्या सोच बन चुकी है, हालांकि पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले वक्तों में मगरिब के वक्त ना बच्चों को बाहर निकाला जाता था, ना कोई खुद निकलता था, लेकिन अब मगरिब के वक्त ही अच्छा लगता है बाहर जाना। बच्चों को मगरिब के वक्त ही खेलना हम अलाउ करते हैं। मौसम सूटेबल है, मौसम सेट है, तुम इस टाइम फ्री हो, अब तुम थोड़ी देर खेल सकते हो। खुदारा इस लेवल के जालिम मत बने। देखिए, खुद में और आप क्या कह रहे हो, अमिन शर गौसिकिन इज़ा वक़ब। और अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं ये दुआ, कि तुम अल्लाह से दुआ मांगो कि शर से अंधेरी रात की जब वो फैल जाए। और रात में कौन सा शर है? रात में यही शर है जिसकी अभी बात हो रही है, जो हमें बुखारी की हदीस से पता चलते हैं, कि जब रात अपने पर फैलाए तो अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि उस वक्त शैतान मुंतशिर होते हैं। तो इनडायरेक्ट शैतान के शर से, और वो हर उस चीज में पना लेते हैं जहां अल्लाह का जिक्र ना हो। और फिर कुछ रिवायात में आता है कि अपने बर्तनों को भी कवर कर लो, अपने डोर्स को क्लोज कर लो, बच्चों को अंदर रोक लो। तो मगरिब के बाद जिन्नात की एक्टिविटीज होती हैं। तो खुदारा रात की एक्टिविटीज कम करें, बी रियलिस्टिक, कोशिश करें दिन को काम करें, और असर के बाद आपके काम वाइंड अप हों। लेकिन अगर मगरिब के बाद आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करें तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात के वक्त, मगरिब के वक्त बाहर निकलना, बाहर ऐसे ही घूमना, ये गलत चीज़ है। और मगरिब के वक्त कोशिश करें बच्चों को भी अंदर रखें। और हम मगरिब के बाद सारे दरवाजे खोल देते हैं, ताज़ा हवा अंदर आए, हालांकि मगरिब के वक्त सारे दरवाजों को बंद करें। उस वक्त शैतान पनाह ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी जगह सूटेबल है, वो वहां जाएं और अपना फिर काम शुरू करें। और इसी के साथ साथ देखें, अल्लाह के नबी ने क्या कहा इधर हदीस में, कि अल्लाह का जिक्र करो, शाम के अज़कार की अहमियत का पता चल रहा है। आपके साथ में इंशाल्लाह मॉर्निंग इवनिंग सप्लिकेशंस भेज दूंगी, आप लाजमी किया करें, और शाम के अस्कार मगरिब से पहले कर लिया करें, ताकि जब शैतान निकले उनको आजादी मिले, तो एटलीस्ट वो मेरे और आपके पास ना आ सके। और यहाँ पे स्कॉलर एक और बहुत खूबसूरत तारीफ करते हैं, कि अंधेरे से मुराद दिल का भी अंधेरा है। तो गोया अंधेरा दिल में भी आता है, और सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में आने से इंसान दिल के अंधेरों से निकल सकता है। रसूलुल्लाह इसके लिए बहुत दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा शाल फी कल्बी नूरा, या रब्बना अतमिम लना नूरा। और एक और जगह गौसिक, रसूलुल्लाह ने चांद को भी देखकर गासिक कहा था, यानी जब आपने चांद को देखा था तो आपने चांद को गासिक कहा था। और चांद में क्या शर है अगर हम देखें तो देखिए, चांद में ऐसी कुव्वत मौजूद है जो समंदर के अंदर पानी तक को हला देती है। مد و جزر ہوتا ہے. چاند کا تعلق دماغی امراض سے بھی ہے. بہت سی ڈیزیزز آپ دیکھتے ہیں جب یعنی چاند کمپلیٹ ہوتا ہے تو ڈیزیزز اپنی پیک پہ ہوتی ہیں. بہت سے لوگ جن کو ایپیلپسی کے دورے پڑتے ہیں مرغی کے, وہ جب یہ راتیں آتی ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اکثر جن پہ جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے وہ ان راتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اکثر لوگ جن کو ہیڈ ایک ہوتا ہے یا مگرین ہوتا ہے ان راتوں میں یا ان ڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح چاند دیکھیں, اگر سمندر کے پانی کو ہلا سکتا ہے تو انسان کے اندر, یعنی انسان کے اندر بھی تو بہت سا پانی ہے نا, تو اس کو کتنا ہلاتا ہوگا. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر چاند میں اتنی قوت ہے کہ وہ سمندر کے اندر موجود پانی کو ہلا دیتا ہے, مد و جزر ہوتا ہے, تو جو انسان کے اندر پانی ہے, کیونکہ انسان پانی سے بھی بنا ہوا ہے, تو انسان کے اندر کو کس قدر ہلاتا ہوگا. تو دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو کتنا پسند ہے چاند. جب بھی انسان چاند کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے, اور فل مون تو ہر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن کیا ہے, ادھر بھی ایک شر کا پہلو موجود ہے. تو جب رات چھا جائے انسان بھی فکر نہ ہو جائے, بلکہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے اور خود کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دے. یہ تھی تین آیات جن کا ہم نے شارٹ سا تدبر کیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی آیت سے کیا مراد ہے, قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق کا کیا پیغام ہے, اور ومن شر غاسق اذا وقب سے کیا مراد ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک ٹاسک ہے آپ کے لیے اس ویک کا, اور کیونکہ ہمارے پاس اب دو آیات رہ گئی ہیں سورہ فلق کی, اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے, ہم نے پورا پارا کمپلیٹ کرنا ہے, تو ہمیں کچھ ایکسٹرا لیکچرز لینے ہوں گے. ایکسٹرا لیکچر صرف لینا ہوگا, لیکچرز نہیں, کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم تھوڑا جلدی چلیں گے, اور ایک گھنٹہ نہیں, بعض دفعہ ایک گھنٹہ 10 منٹ بھی ہو جائیں گے, تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگا. لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے. اگلی جو دو آیات ہیں, ایک جادو کے حوالے سے ہے, ایک حسد کے حوالے سے ہے, اور وہ دو ایسے ٹاپکس ہیں کہ ہر انسان کے لیے بہت نیسیسری ہے آج کے اس دور میں جاننا, کیونکہ حسد بھی برحق ہے, جادو بھی برحق ہے, نظر بد بھی برحق ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اسکپ نہ کریں, اور کمنگ فرائیڈے انشاءاللہ ایک گھنٹے میں کور کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. تو آج دیکھیں میں نے آپ کو 10 منٹ پہلے فری کر دیا, کیونکہ اس کے بعد اب اگلی آیت تھی, تو اگلی آیت میں سارا جادو اور حسد وغیرہ آ رہا ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں آپ کو سنڈے کو انشاءاللہ, ابھی کل آپ کی کیونکہ کلاس ہے, آج بھی کچھ آن کیمپس اسٹوڈنٹ کی آج کلاس ہے, آن لائن اسٹوڈنٹ کی کل کلاس ہے, تو میں ایسا کروں گی کہ سنڈے کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بھیج دوں گی. صرف ایک گھنٹے کا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ٹاپک حسد یا جادو یا نظر بد, یہ اس کا میجر پورشن کور ہو جائے, اور ہماری جو کمنگ کلاس ہے اس میں ہم سورہ فلق کو کمپلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور سنیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے جاننا. جانے بغیر ہم خود کو پریونٹ نہیں کر سکتے, خود کو نہیں بچا سکتے, جانیں گے تو خود کو بچائیں گے. اس لیے آپ نے وہ لیکچر لازمی سننا ہے, اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں. میں سنڈے کو شیئر کروں گی, اور 4 دن آپ کے پاس ہوں گے, اور جو آن کیمپس اسٹوڈنٹ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ان کے گروپس نہیں بنیں گے, وہ لیکچر آپ کے ساتھ کلاس میں بھی پلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ریڈی رہیے گا, خوش نہ ہوئیے گا آپ کہ میں نے 5 منٹ جلدی فری دیا ہے, فری کر دیا آپ کو. انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ فرائیڈے ہم تھوڑی زیادہ کلاس لیں گے, اور اس سنڈے کو بھی ایک ایکسٹرا لیکچر آپ کے پاس آئے گا. چاہے تو آپ سنیں, اپنے علم میں اضافہ کریں, اور پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. چاہے تو آپ سستی کرتے ہوئے اگنور کر دیں, سنیں گے فائدہ آپ کا, نہیں سنیں گے نقصان آپ کا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور دعا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی, آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا, تقبل اللہ منا ومنکم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.